पहाड़ और मेरा जीवन, किस्त 19। और टेम्परेरी ने अपनी आँख से यूँ धुआं निकाला कि मुझे कभी नहीं भूला। ठुलीगाड़ के पास जो जौ की ताल है, जो उन दिनों 24 पहर सन्नाटे में डूब जो इन दिनों 24 पहर सन्नाटे में डूबी रहती है, वहाँ कभी बेहिसाब चहल पहल रहा करती थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे उस ताल में मैंने ठीक से तैरना सीखा। जौ की ताल के मेरे पास कई किस्से हैं। एक किस्सा तो ऐसा है जिसकी स्मृति मेरे शरीर पर दर्ज है। होता यह था कि मुझे फुर्सत के पर मिलते ही मैं जौ की ताल पहुंच जाता। एक बार जब मैं अकेला वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही टेम्परेरी को बैठे देखा। जी हां, टेम्परेरी उसका नाम ही था। असली नाम क्या था पता नहीं, पर मैं और दूसरे दोस्त उसे टेम्परेरी ही पुकारते थे। उन दिनों हेलीपैड के नीचे स्थित आर्मी की कैंटीन वाले कॉम्प्लेक्स के दाहिनी ओर करीब 100 मीटर की दूरी पर लकड़ी का बहुत बड़ा सा घर हुआ करता था, जो आज भी है, जिसमें कई कमरे हुआ करते थे। इसी में कहीं केंद्रीय विद्यालय में मेरे से एक क्लास सीनियर अशरफ भी रहता था। मुझे तब लगता था कि अशरफ और टेम्परेरी दोनों भाई हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दोनों में इतना फर्क बढ़ता गया कि बाद में उनका भाई लगना बंद हो गया। अशरफ बहुत फास्ट बॉलिंग करता था। वह उम्र के साथ हम सभी में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त और स्मार्ट बनकर निखरा। अशरफ के व्यक्तित्व को लेकर मैं बहुत औचक रहता था। वह स्कूल में सालाना खेलों में भी कई दौड़ों में इनाम पाता था। बाद में मैंने सुना कि वह फौज में चला गया, और फिर कई सालों बाद जब मैं खुद फौज में था, किसी ने उसके देहांत की भी खबर दी। पता नहीं वह सही थी या गलत, मुझे पता चला कि उसे दिल की कोई बीमारी हो गई थी। टेम्परेरी रहता अशरफ वाले घर में ही था, यह तो मैं जानता था, पर यह नहीं जानता था कि वह करता क्या है। वह क्रिकेट के से लेकर कबड्डी तक हर खेल खेलने के लिए हमारे बीच उपलब्ध रहता, और चूंकि हमारे खेलने के लिए हमेशा खिलाड़ियों की कमी रहती थी, इसलिए अक्सर टेम्परेरी हमारे साथ ही खेल रहा होता था। मुझे याद आता है कि एक बार उससे किसी बात पर मेरा झगड़ा हो गया। उन दिनों लड़ाई का मतलब होता था कि किसी तरह दूसरे की गर्दन अपने दाहिने हाथ के फंदे में फंसा लो और उसके बाद फंदे को कसते रहो। उस दिन टेम्परेरी की गर्दन मेरे हाथ में के फंदे में फंस गई। मैंने बहुत देर तक उस गर्दन पर फंदा कसने का, और ऐसा करते हुए टेम्परेरी की गालों के लाल होने व उसके मुँह से निकल रही बकरी जैसी आवाज़ का मजा लिया। अंत में जब मैंने उसकी गर्दन फंदे से मुक्त की तो वह फुंकारता हुआ जमीन पर झुका, और अगले ही क्षण उसके हाथ में एक बड़ी सी ईंट थी। उसने एक क्षण खोए बिना वह ईंट मेरी ओर तान कर फेंक दी। पर उस रोज़ जाने मुझ पर कौन सा देवता सवार था, मैं बेहिसाब फुर्ती के साथ एक और हो गया और ईंट बिना अपना लक्ष्य संधान किए जमीन पर जा गिरी। इससे पहले कि टेम्परेरी दूसरा कोई पत्थर उठाकर मेरी ओर तानता, मैं मौके की नज़ाकत देखते हुए तुरंत भाग लिया। पीछे से मुझे टेम्परेरी की लाठी आवाज़ सुनाई पड़ी। छाले, कहाँ भाग रहा है? बच्चों, छोड़ूंगा नहीं, घर के बाहर खींच कर मारूंगा कुत्ते के पिल्ले को। वह जाने कब तक मुझ पर शब्दों की तीर चलाता रहा। मैं जल्दी ही उसकी आवाज़ की जद से भी बाहर चला गया। हालांकि जल्दी ही हम दोबारा मिले, पर टेम्परेरी मुझे कुछ न बोला। हम फिर से पुराने जैसे दोस्त हो गए। उस रोज़ जबकि मैं अकेला ही जौ की ताल में उतरा हुआ था, टेम्परेरी वहीं बैठ धूप सेक रहा था। पता नहीं कब उसने एक सिगरेट सुलगा ली। उसने सिगरेट जला, मुझे आवाज़ लगाई। मैं पास गया तो बोला, अबे छुंदर, आँख से धुआं निकाल कर दिखाऊँ क्या? आँख से धुआं कैसे निकल सकता है, मैंने सोचा, और जिज्ञासा में उसके करीब चला गया। उसने मुझे और करीब आकर ध्यान से आँख में देखने को कहा। मैंने अपनी नज़र को उसकी आँखों पर फोकस कर दिया कि कहीं जरा सा धुआं निकले और मुझे दिखाई न पड़े, क्योंकि मेरे हिसाब से धुआं तो जरा सा ही निकलना था। इधर मेरा ध्यान उसकी आँखों पर संकेंद्रित था कि धुआं अब निकला कि तब निकला। उधर उसने कब जलती हुई सिगरेट मेरे हाथ से सटा दी, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही मुझे हाथ में जलन हुई, मैं बिलबिलाता हुआ उछला। इधर मैं उछला और उधर टेम्परेरी अपनी जनाना आवाज़ में जोर से हंसा। इस तरह शिकार को उछलते देखने के लिए ही तो सारा ड्रामा किया था उसने। मैं उससे उम्र और कद में छोटा था, शायद इसलिए भी वह मेरे साथ यह मजाक कर गया, नहीं तो इसमें मार खाने के पूरे चांस थे, क्योंकि त्वचा के जलन से तुरंत ही उस पर एक बड़ा सा फफोला निकल आया था। बट क्योंकि टेम्परेरी अभावों के बीच बहुत सख्त किस्म का जीवन जीने का आदि था, संभवतः उसके लिए हाथ की त्वचा पर बित्ते भर का फफोला हो जाना बड़ी बात न रही हो। ऐसा ही कोई मनोविज्ञान रहा होगा जिसने उससे ऐसी करतूत करवाई। वह फफोला तो फूट कर गायब हो गया, पर टेम्परेरी के इस कारनामे की याद मैं अपने हाथ पर आज भी लिए घूम रहा हूँ। उस जौ के ताल के पास समय बिताने के लिए हमने क्या नहीं किया। कासनी गांव के लड़के वहाँ सामने सामने ही केकड़े पकड़ के उन्हें आग में पोल कर यानी पकाकर खा जाते थे। लड़के वहाँ सिगरेट बीड़ी भी पीते थे, पर मेरे में तब बचपन की बहुत मासूमियत भरी हुई थी। बिगड़ने में मुझे अभी बहुत समय लगना था। हालांकि एक बार जरूर मैंने भी संगति के असर में आकर 9वीं-10वीं में कभी गांव में अपने ताऊजी के बेटे के सानिध्य में बीड़ी फूकी, पर केकड़े आग में पोल कर तो कभी नहीं खाए। टेम्परेरी से कभी मुलाकात होगी या नहीं, उसके बारे में लिखते हुए मुझे याद आ रहा है कि मेरे हाथ पर जलती सिगरेट लगाने के बाद मुझे उछलता देख वो कितना खुश हुआ था। उसकी हंसी में जीवन और दोस्ती का इतना ताप था कि मैंने भी उस पर गुस्सा न किया, और आज भी उसके दिए निशान को देख यह सब लिखते हुए मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही है।